Najayati Priyate Bhagavati Nayam Bhutta Bhutta Bhagavati Ajo Nitya Shashvata Yam Purano Na Anyate Anyamani Shayyare. ये एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है जिसका तात्पर्य वैदिक संस्कृति की विधि है और अध्यात्म ज्ञान की विधि है। तो बहुत से धार्मिक लोग जो इसी बात को नहीं मानते, इसके बारे में कुछ धारणा नहीं, बोलते कि आत्मा या सो या रूह का फायदा होते हैं शरीर के साथ, तो इस भूल धारणा कैसे होते हैं? बुद्धि देहात्म बुद्धि से, देहात्म बुद्धि का मतलब ये देह शरीर नहीं है और शास्त्र का मंतव्य है कि ये देहात्म बुद्धि भव बंधन का कारण है। क्योंकि हम इस भूधारणा से ग्रास करते हैं, क्योंकि हम सोचते ईश्वर नहीं, इसलिए हमारे सभी प्रकार की अन्य आसक्तियां होती हैं। भगवान विशब्द का वचन है, तुम सस्त्री भाव अथो गृह क्षेत्र सिद्धांत जनस्य मोहम अहम न ले। मोह मोह कैसे होते? मोह का मतलब आसक्त को सत जैसे मान और सत को असत जैसे, मतलब पूरी विपरीत बुद्धि होती है, विपरीत विवेचना होती है। तो मूल भूल धारणा ये देहात्म बुद्धि ईश्वर नहीं और इसलिए मोहित जीव सोचते हैं कि मेरा स्वार्थ है, मेरा कल्याण है इस शरीर का इंद्रिय सुख के द्वारा, क्योंकि हमारा कुछ भी पता नहीं है कि सुख भौतिक इंद्रियों के द्वारा संभव नहीं है, इसलिए हम माया कृष्ण की बहन में शक्ति से मोहित होते हैं और हम सोचते हैं कि इस शरीर का इंद्रियों का चर्पण करने की सुख और सभी प्रकार का इंद्रिय चर्पण सबसे महान है या सबसे तीव्र है वो स्त्री स्त्री पुरुष अवकाश है, इसलिए ऐसे बोलते हैं कि उस स्त्री पुरुष अवकाश से इस पूरा मोहित जगत मोहित रहते हैं और वो पहले चले हुए हैं और इस स्त्री पुरुष आकर्षण से और समुद्र का भूधारणा भौतिक महासत्या का विस्तार होते हैं। तो एक पुरुष सोचते हैं कि यही स्त्री यही नारी मेरे स्त्री और एक स्त्री सोचते हैं कि यही पुरुष मेरा स्वामी है। लेकिन वास्तव में वो स्त्री तो स्त्री नहीं है, पुरुष पुरुष नहीं है। शरीर पुरुष का मन होते हैं या स्त्री का मन होते हैं, लेकिन शरीर अनित्य है और आत्मा स्थायी है सनातन है। तो इस प्रकार भौतिक नारायण का पुरुषत्व के साथ माया है, माया का प्रकाश है। लेकिन इस मोह का प्रभाव के अनुसार हम सबसे नई शरीर हूं, यही नारी मेरी पत्नी है या यही पुरुष मेरे स्वामी है और ये मकान हमारे हैं और ये बच्चे हमारे हैं और ये लोग हमारे स्वजन हैं और ये सब संपत्ति मेरी है और ये देश मेरा है। तो ऐसे माया का विस्तार होते हैं। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान और आध्यात्मिक जीवन का मूल या पहला सोपान यही समझ है कि हम शरीर नहीं हैं, हम सनातन आत्मा है। शरीर का विनाश होगा लेकिन आत्मा अविनाशी है, आत्मा का विनाश कभी भी नहीं होता है। तो जब तक हम इसी ज्ञान को प्राप्त नहीं होते तब तक सब कुछ जो हम करते हैं धर्म का नाम है तो वो इस भूधारण युक्त होने से कभी भी पूर्ण धर्म नहीं हो सकते। भगवान या गॉड अनेक नाम है, अलग अलग भाषा है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में ये भगवत भक्ति मार्ग में तीन विभाजन है। एक है प्रथम है संबंध ज्ञान, द्वितीय अभिजय, तीसरा प्रयोजन। तो पहला है संबंध ज्ञान, क्या संबंध है भगवान और व्यक्ति। तो पहले से मैं सोचा कि व्यक्ति कौन है, व्यक्ति शरीर नहीं है, व्यक्ति है आत्मा जिसका प्रभाव से शरीर जीवित जैसे देखते हैं, लेकिन वास्तव में शरीर जीवित नहीं है, जिंदा नहीं है। शरीर क्या है और केवल या सायं का विकार है। इस शरीर में क्या है। साइंटिस्ट डॉक्टर बोलिए, शरीर में 90% के ज्यादा वाटर है क्या, ज्यादा H2O कितना 78%। ऐसे अगर हम अगर मैं अभी 2 लीटर जल पीऊंगा तो 200% हो जाएगा। तो ऐसे ज्यादा जल है, ज्यादा कार्बन है, कार्बन मतलब कोयला जैसे, और क्या नाइट्रोजन बहुत, ऑक्सीजन, कैल्शियम, बोन्स, तो ये सब रसायन का भी काम है। लेकिन शरीर जीवित होते जीव से, आत्मा का दूसरा नाम है जीव। जीव का मतलब सचेतन सक्रिय, और शरीर सचेतन सक्रिय होते हैं जब तक जीव उसके साथ संयुक्त होते हैं। और जब भी जीव शरीर को चलते हैं तब से अजीवित होते हैं, मार जाए चलेगा वो चलेगा वो कुछ। अगर हम 10 साल के बाद एक दोस्त के मकान जाते हैं देखते हैं वो बाप नहीं है, ये हम पूछे आपका बाप कहां वो चलेगा, उसका मतलब मार गया। लेकिन वो मरण शब्द हम नहीं बोलते, लोग सोचते हैं ये अमंगल है, मरण के बारे में मत बोलो। तो नहीं बोलते नहीं तो मरण होगा। तो अमंगल है मरण के बारे में नहीं बोलो। अगर हम इस प्रकार से भगवत गीता ज्ञान लेंगे, मरण के बारे में बात करेंगे, फिर संभावना होगा कि हम पुनर्मरण जन्म से मुक्त हो सके। तो वो ही मंगल है। अमंगल है मार जाना, जो अमंगल नहीं अज्ञान में मार जाना वो भी अमंगल है, क्योंकि अज्ञान में मार जाना का पाव होते पुनर्जन्म, और पुनर्जन्म का पाव क्या होते पुनर्मृत्यु, और पुनर्मृत्यु का पाव क्या होते पुनर्जन्म। पुनरावृत्ति नाम है श्लोक का, पुनरावृत्ति जाना है, पुनरावृत्ति मारण है, पुनरावृत्ति जाना है। जब चले शायद जब तक हम किसी प्रकार की चर्चा नहीं करते, तो इसलिए इस प्रकार की चर्चा करना चाहिए कि मैं सनातन हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, मेरा संबंध है भगवान श्री कृष्ण के साथ, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद है, और मैं सामान्य चुप सच्चिदानंद है, जीव हूं, भगवान श्री कृष्ण का अंश है और सेवा हूं। तो यही समझना चाहिए कि शरीर का नारायण होते हैं लेकिन आत्मा सनातन है, और इसलिए शरीर यात्रा अर्थात जीवन का समय, मतलब जब तक इस शरीर चलते रहते हैं तो तब तक ऐसा प्रयास करना चाहिए संबंध ज्ञान प्राप्त करने से, जिससे पुनर्जन्म नहीं हो, तो इससे संबंध ज्ञान अभिजय और प्रयोजन भगवत विद्या के तीन विभाग के बारे में अच्छी तरह मालूम हो जाए। तो संबंध ज्ञान यही सबसे शरीर क्या है, शरीर और आत्म में क्या अंतर है, आत्मा और परमात्मा में क्या संबंध है, वो क्या अंतर है। तो यदि हम इसी ज्ञान अच्छी तरह नहीं समझते तो संभावना है हम आत्मा के बारे में इतनी बड़ी भूल धारणा करेंगे कि हम सोचेंगे कि शरीर ही आत्मा है और इसके ऐसे तो बहुत धार्मिक लोग मतलब एक दुनिया का एक प्रसिद्ध धारणा जिसमें वो सब लोग सोचते हैं शरीर के साथ आत्मा का फायदा होता है और आत्मा ही शरीर है और शरीर मार जाते हैं और उनके आयकर विचार का दिवस जिसमें भगवान का गौर आएंगे और सबका विचार करेंगे और वो शरीर जो मार गया है वो पुनर्जीवित होगा क्योंकि शरीर ही आत्मा है। यही धारणा जो कोई बुद्धिमान व्यक्ति के लिए नहीं है, लेकिन क्या है माया का प्रभाव ऐसे है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति प्रोफेसर साइंटिस्ट डॉक्टर इत्यादि मतलब भौतिक क्षेत्र में बुद्धिमान होने के भी आध्यात्मिक ज्ञान में बड़ा मोड़ कर ऐसे है कि बैंगलोर में बहुत भाई कहीं क्या बोलते हैं इंडियन साखा का अंतरिक्ष का अनुसंधान है उनकी बात है स्पेस रिसर्च हमारे बात कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे ही बैंगलोर में भी मतलब जो बुद्धिशाली लोग सब एस्ट्रो फिजिक्स PhD ऐसे है देखिए उनमें कहीं है कहीं रिसर्च साइंटिस्ट है जो बैंगलोर का एक बाबा को भगवान एक बाबा है बैंगलोर के लाजो जैसे वो अभी मार जाने वाले हैं उसका समय हो गया है। तो आप विचार कीजिए तो कैसे संभव है कि लोग जिनकी बुद्धि कम नहीं है मानते हैं कि वो बड़ा जादू देखाने वाला भगवान तो कैसे संभव है ये माया माया का प्रभाव क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है इसलिए क्या आध्यात्मिक क्या है और क्या नहीं है आध्यात्मिक और भौतिक में क्या अंतर है क्योंकि इस ज्ञान से योग नहीं है इसलिए वो सब लोगों के सभी धार्मिक प्रयास का सब बेकार होगा। तो इसलिए वैष्णव आचार्य प्रयास करते हैं विशेषकर उनके शिष्यों को और जन साधारण को इस आध्यात्मिक ज्ञान परिवेशन करें। श्री प्रभुपाद एक महान वैष्णव आचार्य थे वाले श्री प्रभुपाद पूरे दुनिया में कृष्ण भक्ति की जाती है, लेकिन विशेषकर इसी दिशा का प्रचार किया। बाबा प्रभुपाद विश्व न जायते जीवते का कदा चिन्नाया भूतना भविता बात भूल हम अजो दुर्गम शास्त्र गम पुराण अन्य से अन्यनाशी आत्मा का जन्म आत्मा का मृत्यु कभी भी नहीं होती, आत्मा सनातन है अजो दुर्गम गम शास्त्र गम पुराण अन्य अन्य शब्द में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा सनातन है, स्थायी है। शरीर का मृत्यु होते हुए आत्मा का मृत्यु कभी नहीं है। तो कितना बार शुरू होगा इसी विषय पर प्रचार कर। एक बार पहले इसको में जुड़े हुए लंदन में एक गुरु भाई उसको बताया कि एक बार लंदन में श्री प्रभुपाद दो तीन महीने लंदन में रहे और ये सब इसको भगवत की चीज प्रवचन और एक रोज सारे श्लोक पर प्रवचन और इस सीरीज में तो बार बार अन्य अन्य प्रकार से श्री कृष्ण इस विषय स्पष्ट करते हैं कि शरीर अस्थायी है, आत्मा सनातन है। तो बार बार श्री कृष्ण अजय अविनाशी जी खरीदी एक साल में नाश जो विद्युत भागव न भागो विद्युत सदा। तो बार बार अलग अलग परिप्रेक्ष्य श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि शरीर अस्थायी है, आत्मा सनातन है। तो मेरे गुरु भाई मुझको बताया कि प्रभुपाद एक शिष्य एक बार प्रभुपाद को बोल रहे बहुत साहस कर रहे से बोले प्रभुपाद को बोले कि प्रभुपाद हम बाबा हमको बहुत है कि हम शरीर नहीं है हम आत्मा है। तो अभी हमें समझ गए हैं एक बार तो इस बात पर और नहीं बोले और दूसरे विषय पर प्रवचन किसी प्रभुपाद को बाबा बहुत जोर से बोले तुम नहीं समझ रहे इसलिए बार बार कहना पड़ेगा। और हमारे खुद का जीवन में प्रकट होते हैं कि हम बार बार सुनते हैं और हम हाँ हाँ बोले मेरे विश्वीर नहीं हूँ विश्वीर नहीं हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा दाल खोलते हैं शरीर में फिर वो सब ज्ञान कला से फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और इंजेक्शन करना ये क्या है भूल चिंता होती आ जाऊंगा क्या मार जाऊंगा क्या हो तो इसलिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं और वैष्णव आचार्य बाबा कहते हैं कि हम ईश्वरीय नहीं है, ईश्वरीय अस्थाई है, लेकिन आप सनातन है, भगवान सनातन है, हमारा सनातन संबंध है कृष्ण के साथ। और ये सब संबंध जो है भौतिक स्थिति वो सब अस्थाई है। हमारे माँ बाप है, भाइयों बहनों दोस्त पड़ोसी दुश्मन ऐसे सब है, लेकिन बाप तो बाप नहीं, माँ तो माँ नहीं, शरीर का मान शरीर मान है, दुश्मन भी दुश्मन है, यही सब। एक्चुअली सब हमारे प्रिय है, सब हमारे भाई बहन है, क्योंकि पारमिता है कृष्ण। ऐसे वसुधैव कुटुंबकम्, अगर हम चित्र समझते हैं कि पिता हम से जगतो माता दास पिता हम, कि श्री कृष्ण परम पिता है, सब प्राणी केवल मनुष्य जाति नहीं है, तो सब वृक्ष कीट कृमि पशु पक्षी वनस्पति अंगुर सब प्राणी के अंदर आत्मा है, सब परम पिता भगवान के संतान है। क्यों इस दृष्टि होते हैं वसुधैव कुटुंबकम्, तो सब हमारे भाई बहन है। अगर इस दृष्टि नहीं होते फिर बंधु शत्रु भाव होते, तो ये व्यक्ति मेरा बंधु है क्योंकि मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जो मेरा इंद्रिय सुख के लिए अनुकूल होते हैं, और वो व्यक्ति मेरा शत्रु है क्योंकि मेरा इंद्रिय सुख में विघ्न रहता है। लेकिन अगर हम समझते हैं कि इंद्रिय सुख मेरा स्वार्थ नहीं है, मेरा कर्तव्य है चल मन धन सब प्रयास श्री कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए, बंधु शत्रु भेदभाव नहीं हो, समबुद्धि होती है, ब्रह्म बुद्ध प्रसन्ना न शोचती न कांक्षती, समस्तादेशु भूतेषु मद्भक्ति लभते राम। जो ब्रह्म बुद्ध अर्थात आध्यात्मिक स्थिति में अधिष्ठित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न चेत सौराश प्रसन्न होते हैं क्योंकि जानते हैं कि न सोचती न कांक्षती, मेरा कुछ संबंध नहीं है इस भौतिक स्थिति के साथ, इस भौतिक संसार में सुष्टि स्थिति प्रवाहित होते हैं, महाकाम सुष्टि स्थिति प्रवाहित होते हैं, और ईश्वरीय का भी सुष्टि स्थिति प्रवाहित होते हैं, जन्म होते हैं संघर्ष होते हैं और मृत्यु होते हैं। लेकिन ब्रह्म गुरु देवी जानते हैं कि मैं कोई संबंध नहीं हूं इस शामिल माये संसार संघर्ष के साथ, मेरा सनातन संबंध है श्री कृष्ण के साथ। तो इसलिए कोई भौतिक वास्तु प्राप्त करने के लिए उत्साही नहीं होते, और अगर किसी भौतिक वास्तु जो वो ब्रह्मपुत्र का हाथ है ऐसी संपत्ति है अगर छूट जाते हैं या उसका चौड़े होते हैं तो वो व्यक्ति शोक नहीं करते और ऐसे समस्या देश भूलते शुरू वो देखते हैं कि सभी प्राणी श्री कृष्ण का अंश है, सेवक संतान है और ऐसे श्री कृष्ण की परम भक्ति प्राप्त होती है। तो यदि हम वास्तव में समझते हैं यही बात, तो हमारे जीवन में पूरा परिवर्तन होना चाहिए। अभी हम अहम ममेति बुद्धि से मोहित होते हैं और इस मोह का प्रभाव से हम सब कुछ देखते हैं जैसे कि ये ही सब कुछ है, मैं ईश्वर हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा मकान है, ये मेरा व्यवसाय है, तो ये ही सब कुछ है। और मेरा व्यापार का लाभ मेरा लाभ है और मेरा परिवार का सुख मेरा सुख है। परंतु यदि हम समझते हैं कि ये सब क्षणिक है, मैं इस शरीर धारण करने के पहले बहुत से शरीर धारण किया है और इस शरीर चलने के बाद मैं अन्य शरीर में प्रवेश करूंगा, तो यदि हम इस आध्यात्मिक ज्ञान से प्राप्त हो इस आध्यात्मिक ज्ञान से क्या बोलते हैं इल्यूमिनेशन प्रकाश हो तो हमारा पूरा परिप्रेक्ष्य अलग है। हम सभी स्थिति में स्थिर हो गए, हम निश्चय करें कि सब कुछ जो चल रहे हैं वो अस्थायी केवल एक भाव सागर के चरण का प्रभाव है। लेकिन मेरा कोई वास्तविक संबंध नहीं है इन सभी स्थितियों के साथ। क्या है समाचार? अंतर्वादियों का आक्रमण हो गया और क्या खेला नहीं, क्या चल रहा है? क्रिकेट टीम अभी खेल देंगे, अभी छुट्टी है क्या? तो ये सब समाचार है, समाचार पत्र में हम ये सब समाचार है और
अपना धर्म ऐसा बचा है
तो ये हुआ ऐसा हो वैसा हो ऐसा हो गया।
तो जो कुछ चलते हैं संसार में, तो जब तक हम संसार में हैं तब तक हम पूरा उदास नहीं हो सकते, लेकिन समझना चाहिए सब कुछ अस्थाई।
मेरा संबंध भगवान कृष्ण से
और इससे जो भी होगा और इस भौतिक संसार में बहुत कुछ हो सकता है, हमें मालूम नहीं। आज या 9 या 10 साल के बाद तो कितना खराबी हो सकती, खाली वो चलते रहते हैं और हमें मालूम नहीं कि भविष्य में कितना अंतर आए हो। हम आशा करते हैं कि भविष्य में सब कुछ अच्छा होगा और यूनाइटेड नेशंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस का संगठन हो। एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक लीग ऑफ नेशन एक ऐसे संघ संगठित हुए जिसका उद्देश्य था शांति स्थापना करना, लेकिन वो आशा निष्फल था क्योंकि 21 साल के बाद दूसरा विश्व युद्ध का शुरू हुआ और दूसरा विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संगठित हुआ जिसका एक ही उद्देश्य था दुनिया में शांति स्थापित करना। लेकिन अशांति होते हैं, कितना युद्ध चलने विश्व में और यूनाइटेड नेशंस का मुख्य काम है यूनाइटेड नेशंस पीस फोर्स बनाना और दूसरे देश को आक्रमण करना। तो शांति स्थापना के लिए अलग अलग देश को आक्रमण करना शांति का नाम। तो यही काली युग है और भविष्य में हम यही मतलब है कि शांति की आशा के लिए वो संयुक्त राष्ट्र संगठित हो, लेकिन शांति नहीं हो और शांति नहीं हो इस भौतिक जगत का स्वभाव है कि जितने भी हम प्रयास करते हैं तो सुख शांति इत्यादि नहीं हो। और वास्तव में यही आशा कि इस भौतिक जगत में सुख शांति होगी वो एक नास्तिक भाव की प्रकृति कि यही पर इस भौतिक जगत में सुख शांति होगी और हम सुख शांति में इंद्रिय सुख भोग करेंगे। और भगवान का कथा है वो ऊपर वाला है तो ऊपर रहो हमको ज्यादा बिस्तर मत करो लेकिन हमको आशीर्वाद दे जिससे हम सुख शांति में विशाल इंद्रिय सुख भोग कर भोग करें। तो यही आशय कि इस जगत में हम सुख शांति प्राप्त करेंगे ये संबंध ज्ञान का अभाव का कारण है। समझना चाहिए कि सुख शांति का सिद्धांत भगवान का नाम है। तो हमारा पूरा प्रयास कि इस भौतिक शरीर और इस भौतिक स्थिति को भोग करना एक पूरा प्रयास दूषित है। तो शुद्ध बुद्धि हो सकती यदि हम समझते हैं कि हम ईश्वर नहीं है, शरीर अस्थाई है, हम आत्मा हैं और आत्मा का कर्तव्य है परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की सेवा। यदि हम स्वीकार करते हैं कि ईश्वर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, वो शुद्ध बुद्धि लेकिन पूरी शुद्ध नहीं है, अभिशुद्ध। तो अगर हम ऐसे सोचते हैं क्या होते हैं तो शुद्ध बुद्धि का फल होते हैं मुक्ति का। लेकिन क्योंकि वो बुद्धि पूर्ण शुद्ध नहीं होती है, अभिशुद्ध विशेष रूप से शुद्ध नहीं होती, इसलिए विमुक्ति प्राप्त नहीं होती, क्षणिक मुक्ति या अवास्तविक मुक्ति प्राप्त होती है। यही वृंदाक्षर विमुक्त माया स्वयास्ती भाव अविशुद्ध परम पदम तपस्या करते हैं मुक्त होने के लिए, तो शुद्ध बुद्धि अर्थात नहीं शरीर नहीं हूं मैं आत्मा हूं, शुद्ध बुद्धि से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन विशुद्ध बुद्धि का अभाव अर्थात मैं कृष्ण दास हूं, मेरा कर्तव्य है खुद विकास भगवान कृष्ण के विचार से वर्तन, इस विशुद्ध बुद्धि का अभाव से वो आर्धमुक्त या वास्तव में अमुक्त जीव का पतन होता है। तो इसलिए संबंध ज्ञान क्या है, मैं आत्मा हूं मैं कृष्णदास हूं, तो ये ज्ञान अच्छी तरह सीखना चाहिए। कौन है भगवान, ये शब्द का क्या मतलब है, क्यों कृष्णा भगवान जैसे और शिव ब्रह्मा आदि देवता नहीं, तो ये सब अच्छी तरह सीखना चाहिए। आज दोपहर एक व्यक्ति आए और मुझसे पूछे कि कौन सा श्रेष्ठ, प्रभु की भक्ति या गुरु की भक्ति, मैं जवाब नहीं दे, क्योंकि वो नहीं जानते प्रभु शब्द क्या मतलब है, भक्ति शब्द क्या मतलब है और गुरु का क्या मतलब है। तो कौन से श्रेष्ठ, प्रभु भक्ति या गुरु भक्ति, वो नहीं जानते प्रभु कौन है, प्रभु शब्द का क्या मतलब है, भक्ति शब्द का क्या मतलब है, गुरु मतलब क्या है। तो ऐसे जो छोटे बच्चे जो 1+1=2 नहीं समझते, तो ऐसे बच्चे को E=mc² सिखाने का प्रयास क्या लाभ। तो भगवान भक्ति तो भगवान की भक्ति करना चाहिए, लेकिन अगर हम नहीं समझते
आत्मा क्या है, भौतिक स्थिति क्या है, आध्यात्मिक स्थिति क्या है, भगवान कौन है, कैसे भगवान कौन है, तो कहेगा वो हमारा मत नहीं है कि कृष्ण भगवान है। समस्त वैदिक ज्ञान का सार अंश और सब महान महान ऋषि भी, तो ये एक ही बात हो कि कृष्ण स्वयं भगवान स्वयं, तो ये सब समझना चाहिए। नहीं तो कीर्तन तो कीर्तन नहीं हो, सेवा तो सेवा नहीं हो। उद्देश्य कीर्तन सेवा इत्यादि में उद्देश्य मुख्य है। अगर हम कीर्तन करते हैं और हमारा उद्देश्य है बहुत जोर से चिल्लाना, तो चिल्लाने से ही वो फायदा जो मिलते हैं मुझे नाला नहीं क्या फायदा नहीं पड़े चिल्लाने से। अगर मतलब ज्यादा मिर्ची खाना है और ज्यादा राजा गोल होते हैं ज्यादा चिल्लाना होते हैं तो राजा गोल कमाने कुछ फायदा हो सकता है, राजा गोल तो थोड़ा कम जाए लेकिन उससे सात्विक गुण नहीं हो, तो राजा गुण कम होगा और फिर तामस गुण होगा। तो वो कीर्तन तो कीर्तन नहीं होते, सेवा तो वास्तविक सेवा नहीं होती यदि हमारा उद्देश्य नहीं होते। संस्कृत हरि दोष भगवान हरि का शोषण करने का उद्देश्य होना चाहिए। कीर्तन करो सेवा करो लेकिन साथ साथ श्रवण करना चाहिए। आज सुबह यशोमती नंदन के बोध के साथ इसके बारे में मैंने थोड़ी चर्चा की कि इस सुबह का कार्यक्रम मॉर्निंग प्रोग्राम जो सब इस्कॉन देवी है, जो मंगल आरती तुलसी आरती सब होते हैं, लेकिन मुख्य अंग है श्रीमद् भागवत प्रवचन, जिसमें भगवत तत्व ज्ञान परिवेषित होते हैं। तो अगर हमारा अभ्यास नहीं होते भगवत तत्व ज्ञान चर्चा करें श्रवण करें तो कीर्तन करके भी फलतु हो, कौज मतलब वो कीर्तन तो कीर्तन नहीं हो, तो श्रवण करो, श्रवण कीर्तन दोनों एक साथ होना चाहिए। श्रवण कीर्तन और सेवा, श्रवण कीर्तन करो अनुखन असत पचाव छाड़ी, श्रवण कीर्तन सदैव करो और असत जपशप चढ़ो, श्रवण कीर्तन करो कृष्ण के बारे में। तो ये भगवत तत्व ज्ञान का मूल यही संबंध ज्ञान कि शरीर नाशवान है और आत्मा अविनाशी है और आत्मा का एक ही कर्तव्य है अविनाशी भगवान कृष्ण की प्रेममय सेवा करना। हरे कृष्ण कुछ प्रश्न है देखिए, एक दर्शन मैसेज है
निशांदिनी देवी जैसी इतने श्रद्धालु हो तो हिंदी का एक शब्द ही नहीं समझते, लेकिन आते हैं बच्चों को विश्वास है कि सुनने से भक्ति बढ़ेगी। तौबा भी ऐसे करो, तौबा जब भारत में हिंदी में प्रवचन दिए और इनके सब अमेरिकन शिष्यों भाग जाए तो कहाँ भाग जाते हैं, तौबा जाने हिंदी में नहीं सुनते, बैठो सुनो। सुनने से आध्यात्मिक का उड़ान हो, कुछ प्रश्न है? क्या प्रश्न है? आप जय सही आम माइक से
तो क्या ये समझे कि हम अपना दूसरे शरीर छोड़कर आए थे, यहाँ से हम वापस जाएंगे तो वही शरीर में प्राप्त होगा या कोई अन्य
शरीर? स्वरूप ज्ञान, संबंध ज्ञान का सर्वोच्च स्तर है स्वरूप ज्ञान। मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या गोपी हूं या लोक हूं या मयूर हूं या ब्रज का वृक्ष हूं, आप क्या है? सामान्यता भक्ति में समझ सके वो स्वरूप ये देखते, लेकिन संभव है कि एक मुक्त जीव की इच्छा हो सकती अन्य प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा करने और उसमें एक अन्य धारण करते हैं। आप समझते हैं? मुझे भी नहीं समझ, लेकिन ऐसा शास्त्र का लोग हमारे मुख्य आचार्य रूप गोस्वामी का लोग तो प्रभुपाद बहुत बार बोले जब भक्तों प्रभुपाद से पूछते आध्यात्मिक ज्यादा स्थिति के कारण प्रभुपाद बोले कि ये ज्ञान भौतिक बुद्धि के आती है, तो जाओ वहां पर क्या होगा देखेंगे फिर समझेंगे। हम अभी क्या बोलते हैं मेंढक कुआ में, क्या बोलते हैं मेंढक मेंढक हम कुआ में क्या बोलते हैं नहीं जाते, और हम बहुत नीचे से कुआ का ऊपर कुछ है क्या है आता नहीं, लेकिन कुछ है ऊपर, लेकिन वो ऊपर में क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं है, पूरा जीवन है इस कुएं में। तो यहाँ पर ताजा ताजा कीप मिलते खाने के लिए और हमारा पूरा मैदक मैदक समाज है और मैं डॉक्टर फ्रॉग हूँ, डॉक्टर ऑफ फ्रॉगोलॉजी। तो हम अभी अज्ञान का कुआ में है, तो शास्त्र में ज्ञान है तो वो आध्यात्मिक जगत किस प्रकार है, लेकिन अनुभूति जो केवल दौड़ने से अनुभूति नहीं होती। तो ये उदाहरण दिया था आज कि थाईलैंड में श्यामगर स्वयं थाईलैंड में एक फल है दुरियन बोलते। कोई थाईलैंड गया है छुट्टी के लिए काम के लिए, दुरियन उसका बहुत खराब बात बोल है, लेकिन थाई लोग और चाइनीज लोग उसको बहुत पसंद करते। और होटल में दुरियन का मौसम में वो साइन लगाते हैं दुरियन फल अंदर लाना मना है, क्योंकि उससे इतना सा बात दूर है। तो उसका स्वाद है वो बहुत गर्म होते हैं और थोड़ा सा मीठा होते है और एक बार ले होता बहुत अच्छा बहुत खराब लगता। तो अभी आप सब समझते हैं दुरियन का स्वाद कैसे है। सब मालूम है दुरियन का स्वाद, जितने भी हम प्रयास करते हैं देख कर कहना दुरियन का स्वाद क्या है। तो जब तक आप स्वयं नहीं करते तो तब तक समझ नहीं आएगा। तो ऐसे आध्यात्मिक जगत जाके आप समझ लेंगे स्वयं अनुभूति से। प्रभुपाद भी एक उदाहरण दिए कि एक व्यक्ति जो कभी भी काठाव, क्या बोलते हैं जैकफ्रूट हिंदी में, काठाव जैकफ्रूट फनस फनस संस्कृत शब्द फनस फनस बोलते हैं हिंदी में गुजराती में। तो फनस एक व्यक्ति था जो जैकफ्रूट फनस तो कभी भी नहीं खाए और दूसरे व्यक्ति से पूछो तो फनस का कैसे स्वाद। और वो व्यक्ति जो सोच बोला कि वो स्वाद है जैसे गन्ना का रस एक मुसलमान गन्ना रस एक मुसलमान का दारी में से चांद थे गन्ना रस तो ऐसे स्वाद। तो आप जाइए गोलोक धाम और फिर अनुभूति हो फिर आप समझ। प्रभुपाद बोले कि ओ कृष्ण सब गोप ग्वाल के बच्चे के साथ खेलते हैं और दोपहर वन भोजन होते पिकनिक होते, लेकिन कभी कभी इतना सा थक जाते हैं कि ऐसे आराम करके आधा सोते हैं और शक्ति नहीं है खाने के लिए। तो उस समय और लाडू क्या बोलते हैं तो लाडू स्वयं मुंह में आते हैं अभी समझते हैं? नहीं। तो हम सब कुआ में नहीं जाते प्रभुपाद की कृपा से हम सब गोलोक धाम जाएंगे। हरे कृष्ण।